सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
नमस्कार श्रोताओं, आज सुर्खियों में हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की, जिसमें उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण उल्लेख किए। अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार तक, डिजिटल इंडिया से लेकर संस्कृति संरक्षण तक और ऊर्जा आत्मनिर्भरता से लेकर सामाजिक समावेश तक प्रधानमंत्री के भाषण में सब कुछ था। और समझेंगे कि कैसे ये कदम भारत को एक नए मजबूत और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। ये हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करेंगे, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शिशिर जी, क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि जीएसटी सुधार से कारोबारियों और आम लोगों को क्या राहत मिलेगी और जीएसटी के नए स्वरूप की कब तक अपेक्षा की जाती है? लेकिन आपके जवाब से पहले हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया और समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवी की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे।
देखिए, जो जीएसटी के सुधार की बात की जा रही है, तीन मुख्य स्तंभ पर आधारित है, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी सभी की है वो है कि दरों को किस तरीके से फेरबदल किया जाता है। कारोबारियों के लिए यह है कि किस तरीके से संरचनात्मक बदलाव किए जाते हैं। और तीसरा जो स्तंभ है वो है आपका ईज ऑफ लिविंग, यानी कि उनके लिए जिंदगी और कैसे बेहतर होती है। हम यहाँ पर शुरुआत अगर करें दरों को लेकर के, मई 2017 में जो जीएसटी है उसमें दरें तय की गई थी। श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी और उसमें 1200 से ज्यादा सामान और जितनी भी सेवाएं सकारात्मक लिस्ट में, यानी कि पॉजिटिव लिस्ट में है, उनके लिए जीएसटी की दर बनाई गई। और मूल रूप से जो जीएसटी की दर, चार दरें, 5, 12, 18 और 28, और इसके अलावा 2-3 विशेष दरें हैं, जैसे सोने के ऊपर 3% है, हीरे के ऊपर 0.25% है। और चूंकि मुआवजे की बात कही गई थी तो एक कंपनसेशन सिस, यानी कि मुआवजा क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी की गई, जो कि 28% वाले जो सामान थे उनमें से कुछ सामान पर लगाया गया। अब जो केंद्र सरकार ने मंत्रियों के समूह को प्रस्ताव भेजा है उसमें मूल रूप से बात कही गई कि ये 5, 12, 18 और 28 की जगह पे 2 ही होंगी, 5 और 18%, ये सुझाव दिया गया है। 5% में आप समझ लीजिए कि जितने भी आवश्यक जरूरी चीजें हैं, जो रोजाना इस्तेमाल की चीजें हैं वो होंगी, और 18% में जो है वो सामान होंगी जिनके बिना भी जिंदगी हमारी चल सकती है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताएं कि जितने भी खाने पीने की चीजें हैं या आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की, जैसे हेयर ऑयल है, इन सब चीजों को आपको 5% में है, जिस पर अभी 12% लगता है। और कई ऐसी चीजें हैं जो कि मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, उनके लिए एक तरीके से उनके महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हो जाता है, जैसे टीवी का सेट है, एयर कंडीशनर है, छोटी गाड़ियां हैं, उन सबको 18% पर लाने की बात है। तीसरा जो एक विशेष दर है जिसको हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं सिन गुड्स, अर्थशास्त्र में सिन गुड्स के जगह एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसको डिमेरिट गुड्स कहते हैं। तो उस डिमेरिट गुड्स में क्या आपके हैं? सिगरेट है, पान मसाला है, गुटखा है, बड़ी ऊंची गाड़ियां हैं, इस तरह की जो चीजें होंगी वो आपके लिए विशेष दर होगी जिसकी 40% दर है। तो ये व्यवस्था जो है वो आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसकी अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अगले सप्ताह एक बैठक होगी, मंत्रियों का समूह जो सिफारिश देगा, फिर उस सिफारिश के आधार पर एक अधिकारियों की समिति होती है जिसको फिटमेंट कमेटी कहते हैं, फिर ये फिटमेंट कमेटी जीएसटी काउंसिल के पास प्रस्ताव को अंतिम रूप लेकर के जाएगा और जो जीएसटी काउंसिल है उस पर अपनी सिफारिशें देगा। तो ये सारी प्रक्रिया है दरों को लेकर के। दूसरा जो स्तंभ था जिसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक बदलाव, उसमें संरचनात्मक बदलाव में क्या चीज देखना है? क्लासिफिकेशन का। अब जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि पापड़ के शेप को लेकर के कई बार विवाद हुआ, इसको लेकर के मामला जो है वो कह लीजिए कि न्यायिक प्रक्रिया में गुजरा कि आप त्रिकोण वाले को आप पापड़ कहेंगे या केवल गोल आकार वाले को पापड़ कहेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन का इशू था। खाने पीने की चीजों के सामान में ये बहुत बड़ा मुद्दा आया। तो ये दूसरा स्तर है जिसमें बदलाव किया जाना है, जिसको हम लोग संरचनात्मक बदलाव कहते हैं, क्लासिफिकेशन इश्यू है। और तीसरा जो स्तंभ है जिसको हम लोग ईज ऑफ लिविंग कह रहे हैं, उसमें जो बदलाव है कि जैसे आप यदि एक अच्छे करदाता हैं और आप यदि जीएसटी की व्यवस्था में नहीं है, आयकर आप देते रहे, आप जीएसटी की व्यवस्था में आना चाहते, तो आपको कम से कम समय में रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए। जैसे 95% करदाता जो है उनको 3 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन मिल जाए, रिफंड की प्रक्रिया आसान हो जाए। तो ये तीसरा स्तंभ है। तो ये पूरा सुधार का खाका है जिस पर काम चल रहा है, और उम्मीद है कि अगले 15 से 20 दिनों में इस पर जो है वो अंतिम स्वरूप हमें देखने को मिलेगा।
और इनकम टैक्स यानी आयकर देश के कामकाजी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पर नया कानून भी पारित हुआ है। जीएसटी के साथ जोड़कर आप इसका क्या असर देखते हैं?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें कि आयकर का कानून जो कि 1960 का बना हुआ है, 6 दशक से भी ज्यादा पुराने समय का है, और उसमें कहते हैं कि 1961 से लेकर के अब तक इतनी बार बदलाव हो चुके हैं कि जो आयकर कानून की जो मूल धारणा थी वो कहीं ना कहीं खो गई है। तो अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र, इसमें लोकसभा ने पारित किया है आयकर का नया विधेयक, और उसे राज्यसभा ने वापस कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू होना है। तो अब उस बदलाव का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है कि सरल हो, सहज हो, समझने में आसानी हो। तो एक तरफ आपके पास जीएसटी में बदलाव और दूसरी तरफ आयकर कानून का नया स्वरूप, इन दोनों को मिलाकर के है कि करदाता के लिए कर चुकाना कोई दर्द ना रहे बल्कि कर चुकाना एक सुखद एहसास दे।
और प्रधानमंत्री ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
शिशिर जी, इससे युवाओं के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या नया होने वाला है?
देखिए, अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट ने एक योजना को मंजूरी दी थी जिसका नाम था आपका इम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ईएलआई जिसको हम लोग कहते हैं, और उस ईएलआई का ही एक स्वरूप आप कह लीजिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, जिसमें 3.5 करोड़ लोगों को देना है और उसमें पहली नौकरी पर 15,000 रुपए का जो है अतिरिक्त फायदा मिलेगा। इसके पीछे दो सोच है। एक सोच यह है कि हम लोग आमतौर पर नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी समझ लेते हैं, तो इसका नुकसान ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा दबाव जो है वो सरकारी भर्तियों पर हो जाती है, और उसमें चूंकि पद की संख्या सीमित है तो जाहिर सी बात है काफी लोग ऐसे होते हैं जो आवेदन करते हैं लेकिन उनके लिए वहां पे रास्ता नहीं खुल पाता है। तो उनको निजी क्षेत्र में किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, और देखिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी ही है, लेकिन उसके लिए कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए, तो यहां पर यह है कि जो आपको तनख्वाह मिलेगी उसके ऊपर 15,000 रुपए का अतिरिक्त आपको मिलेगा। दूसरा, अगर ईएलआई में अगर आप देखेंगे तो ईएलआई के तहत जो है जो भी कंपनियां रोजगार दे रही हैं, और ध्यान रखिएगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो रोजगार दे रही हैं उनको अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्यों वित्तीय सहायता दी जाएगी? ताकि वो नए काम के लिए वो आगे बढ़े और अपने कारोबार का विस्तार करे। तो निजी स्तर पर निवेश हो, निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा नौकरी दें।
एक और बात जो प्रधानमंत्री के संबोधन में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, देखिए कि जिन्होंने राष्ट्रीय खनिज मिशन और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की बात की है और उससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होने में भारत को काफी सहायता मिलेगी। पहले प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं।
दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है, तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूँ कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। मेरे देशवासियों की संकल्प शक्ति देखिए, हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया।
देखिए, जब हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं तो इसमें जैसे आप कहते हैं ना जीवाश्म आधारित ऊर्जा, जैसे आपके पेट्रोल डीजल कोयला वगैरह जो है, तो अब चूंकि पेट्रोल डीजल तो वहां से नहीं बल्कि कच्चा तेल निकलता है, फिर हम उसको प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या गैस का इस्तेमाल करना है। अब इसकी जगह पर यह कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा हो गए, पवन चक्की से मिलने वाली ऊर्जा है, या जल के जरिए जो हमें ऊर्जा मिलती है, इन सब पे हम कैसे ध्यान दे सके और साथ ही साथ जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम किस तरीके से ज्यादा जिसे कहा जाए कि पर्यावरण के अनुकूल बना सके। क्योंकि हमेशा ये भी कहा जाता है कि जो कोयले से चलने वाला बिजली घर है वो बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाता है, लेकिन क्या उस जगह पर ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। और ऐसे कई जो ताप बिजली घर हैं हमारे देश में उन्होंने ऐसे उपकरण लगाए हैं जिससे कि वहां पर बिजली का उत्पादन हो कोयले से ही हो लेकिन वो उससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, कार्बन फुटप्रिंट कम हो। और दूसरी तरफ इन ताप बिजली घरों को ये भी इन्होंने किया है कि जो भी उनके पास खाली जगह है वहां पर उन्होंने सोलर पैनल के जरिए सौर ऊर्जा का कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ऊर्जा चक्र है जिसमें अभी तक हम जीवाश्म पे ज्यादा निर्भर करते थे और उसके लिए 2030 तक हमने बड़े उसमें लक्ष्य रखे थे, इनफैक्ट 2030 के अब 2070 तक अभी हमारा लक्ष्य है, उन लक्ष्यों में काफी हद तक हमें कामयाबी मिली है
जी। और राष्ट्रीय खनिज मिशन के बारे में भी प्रधानमंत्री ने कहा है।
आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे
हैं। इसको हम लोग कहते हैं रेयर अर्थ। जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल के हैं वहां पर उनकी उपयोगिता काफी ज्यादा होती है। कुछ समय पहले चीन से जो हमारे स्थिति बनी थी उसकी वजह से रेयर अर्थ को लेकर के एक ये आशंका जताई जाने लगी कि देश में कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जो है वो इसमें कितना नुकसान पहुंचेगा। तो अब क्रिटिकल मिनरल मिशन का एक हिस्सा ऐसे मिनरल्स को खोज करना है जो कि वहां पर जो निर्भरता चीन के ऊपर है हम उनको कम कर सके, और दूसरी ओर बाकी और भी ऐसे कई मिनरल्स हैं जो कि हमारे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, चाहे अब जैसे परमाणु ऊर्जा की हम लोग बात कर ले या फिर हमने जो पारंपरिक जो हमारे उद्योग हैं उनके लिए हम बात कर ले, उन सब जगहों पर क्रिटिकल मिनरल का हम किस तरीके से उत्पादन कर सके।
और प्रधानमंत्री ने डीबीटी और नए शासन सुधारों के बारे में भी उल्लेख किया है।
नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम कानून नीतियां रीतियां वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है।
देखिए, सुधार एक सतत प्रक्रिया है, ये एक पुरानी बात है। और अब जब हमारे लक्ष्य जो है वो हर तीन तीन साल पांच पांच साल के लिए है, जैसे अभी का हमारा पहला लक्ष्य क्या है $5 ट्रिलियन, उसके बाद हमारा अगला लक्ष्य क्या है $7 ट्रिलियन है, फिर हमारा है $10 ट्रिलियन है और फिर हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है। तो अगर आप देखें 2027 से लेकर के 2047 तक के हमने लक्ष्य तय कर रखे हैं। उन लक्ष्य को तय रखने के लिए जरूरी है कि जो कुछ भी आपकी नीतियां हैं आर्थिक नीतियां हैं उसको समय अनुकूल कैसे बनाया जा सके, उसको कैसे बदलाव लाया जा सके। और उसी बदलाव लाने की दिशा में एक विशेष कार्यबल बनाने की बात कही गई है। कार्यबल की सिफारिश जो है वो अभी उसकी समय सीमा तय नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले एक से दो सालों के भीतर उनके सुझाव आ जाएंगे और फिर 2027 के बाद जब हम $7 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे होंगे या फिर हम 2033 जिसमें हमारा $10 ट्रिलियन का लक्ष्य है उसमें उन सुझाव को अमल करने से किस तरीके से मदद मिलेगी। और चूंकि हमारा अंतिम लक्ष्य अभी के समय में क्या है 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो ये सुधार की प्रक्रिया सुधार का ब्लूप्रिंट क्या हो वो आप का इस टास्क फोर्स के जरिए आएगा
जी। तो श्रोताओं, जैसा कि शिशिर जी ने बताया, भारत का विकास सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी, सामाजिक समावेश और हमारी सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती भी जुड़ी हुई है। तो आइए हम सब मिलकर इन पहलों को समर्थन दें और एक विकसित आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में अपनी भूमिका निभाएं। शिशिर जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
सुर्खियों में।